ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
ేవాస్తమశ్రహశ్చ त्वन्मायया संवृतचेतसस्त्वाम् पश्यन्ति नानान् विपश्चितो ये विभर्षिरूपान् अवबोधयात्मा क्षेमाय लोकाश्चराचरस्य भगवान् के गुणों का स्मरण करना बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। और वैसे तो भगवान का गुणगान किया जाए, श्रवण किया जाए, कभी भी सदा मंगल करता है। परंतु विशेष पर्व पर और विशेष देश में भगवान के गुणों का श्रवण कीर्तन और अधिक महत्व रखता है। इसी में भागवतम में श्री सुखदेव गोस्वामी भगवान के दिव्य जन्म की कथा कह रहे हैं। कहते कहते यहाँ तक पहुंचे कि भगवान श्री कृष्ण गर्भ में आ चुके हैं माता देवकी के। कंस देखने आया तो समझ गया देवकी का तेज देख करके कि इसके गर्भ में भगवान आ गया, क्योंकि पहले ऐसी नहीं थी। कंस भी जानता था कि श्री विष्णु में बहुत तेज है, वो तो गर्भ में आ गया इसलिए देवकी का तेज बढ़ गया था। देवकी प्रसन्न थी तो देवकी का वध नहीं किया। उस समय प्रतीक्षा करने लगा कि जब बच्चा जन्म लेगा तो बच्चे को मार डालूंगा, अगर इस समय मारता हूं तो बेचारी देवकी मर जाएगी। ठीक है, देवकी के बच्चे पर कोई उसका मोह नहीं हुआ, छोह नहीं हुआ, देवकी से हो गया। एक तो ये स्त्री है उसको मारना ठीक नहीं, और दूसरे मेरी बहन है उस पर भी गर्भवती। कंस जैसा राक्षस भी देवकी को देखकर बदल गया, वो प्रतीक्षा करने लगा। देवता जितनी लालसा से प्रतीक्षा कर रहे थे उसे कम लालसा नहीं थी कंस की, लेकिन बच्चा को मारने के लिए वो जी प्रतीक्षा कर रहे। और दूसरे लोग मनुष्य आए तो सो लेते हैं, खा लेते हैं, लेकिन वह तो सोता नहीं था एक सेकेंड। आसीन संविशंस्तिंस्टन भुंजान पर्यतन्मय चिंतयान हसी के सम अपश्य तन्मय जगत। खाते समय भी कृष्ण का चिंतन करता, कहीं आकर के हमको मार न दे, देवकी के गर्भ से प्रकट होकर के और आकर के हमको मार न दे। संविशंस लेटता था तो उस समय भी उसको भगवान का भय बना रहता, सोता नहीं था। संविशन का अर्थ है इसे हाथ यही चिंतन करता रहता, धक धक कलेजा करता रहता था, मार न जाए। इतना कृष्ण भावना भावित तो भक्त लोग भी नहीं होते, लेकिन विरुद्ध भाव से थे। खड़ा रहता था तब भी चिंतन करता था, झुंझाना कुछ खाता था तब भी डर लगता था। नारद जी ने कह दिया था कि अरे विष्णु का कोई ठीक नहीं, कहीं से भी प्रकट हो जाए। वैसे कवर डालने में उस भात रोटी से डरता था, इसमें से विष्णु ना आ जाए, इतना भय था कंस। कंस का मन भय से लगा भगवान यह प्रतीक्षा कर रहा था। इसके बाद जिनके प्रार्थना से, जिनके प्रस्ताव से भगवान अवतार ले रहे हैं वे ब्रह्मा जी, भगवान शिव, इंद्र और ऋषियों में श्री नारद आदि, ये सब आए कंस के कारागृह में अलक्षित रूप से, मनुष्य उन्हें नहीं देख सकते परंतु वे सबको परस्पर देख रहे थे। अच्छा, उनके लिए आवश्यक नहीं है कि जमीन पर तो पैर देते ही नहीं, भूमि पर पैर नहीं देते हैं देवता। देवताओं के शरीर की दो विशेषता होती है, एक तो उनकी पलकें नहीं गिरती है, इसलिए उनको अनिमिष कहते हैं, निमिष नहीं, और भूमि पर पैर नहीं देते। आकाश में रहने वाले जीव हैं, जैसे हम लोग पृथ्वी पर रहना स्वाभाविक समझते हैं, आकाश में चढ़ेंगे तो धम से गिर जाएंगे, तो देवता लोग जोर लगा करके भी जमीन पर नहीं आ पाते, आकाश में ही उनका शरीर रहता है। उनका सूक्ष्म शरीर है अग्नि वायु और आकाश से बना हुआ प्रधान, तो दिखाई नहीं पड़ते हैं मनुष्य, तो शरीर खचाखच भर गया आकाश कंस का कारागार, लेकिन एक मनुष्य नहीं देख रहा था कि देवता है। और देवता रहते हैं, हम देखें या ना देखें, जैसे तो प्रत्येक मनुष्य के प्रत्येक जीव के इंद्रिय पर भी देवता रहता, लेकिन कोई देखा है आज तक? और यहाँ हाथ में भगवान इंद्र है तो इंद्र से ही खैनी मलवा रहा है, देवता क्यों नहीं दुखी होंगे? ये हाथ है, हाथ में इंद्र देवता रहते ऐसा कहा गया। जब कोई व्यक्ति मृदंग बजाता है या माला गूंजता है, भगवान का श्रृंगार करता है, मंदिर वादन करता है, इंद्र देवता प्रसन्न होकर के अपने सारे गुणों को भर देते हैं उस भक्त में। जो त्रस्त भक्ति भगवत के किंचना सर्वय गुण तत्र समा सकते, सर्वय गुण तत्र समा सकते। जहाँ भगवान की भक्ति होती है तो सारे देवता वहाँ आते हैं और अपने अपने गुणों के साथ आते हैं, और जो भक्ति नहीं करते हैं वहाँ तो देवता आते नहीं है, सारा अपना दुर्गुण भेज देते हैं वहाँ। यह टीका में बात लिखी है। और जिह्वा में अग्नि देवता का निवास, इस जिह्वा पर कोई व्यक्ति यदि बिना भोग लगा हुआ पदार्थ रखता है, अग्नि देवता बहुत रंज होते हैं, क्या करे, वो वास किए हैं, खाना पड़ेगा। और सरस्वती जी वाग इंद्रिय पर रखती, जिह्वा के दो कार्य हैं, एक तो रस लेना और दूसरा वाइब्रेशन बोलना, तो बोलने वाला जो डिपार्ट है वो सरस्वती जी का है। कोई व्यक्ति जब बोलना चाहता है तो पहले सरस्वती जी सैंक्शन करती है, अतः भगवान का ही गुणगान करना चाहिए, नहीं तो सरस्वती जी बाद में इतना रंज होंगी कि फिर ऐसा शरीर मिलेगा कि एक शब्द भी नहीं गा पाएंगे बोल पाएंगे। तो कुत्ता का शरीर मिल जाएगा तो केवल धो धो करेंगे बस, और कोई राग रागनी से कोई तक करेंगे। ऐसे तो पहले वो शरीर मिला होगा मनुष्य का, लेकिन उस समय सिनेमा का गीत गाया होगा, वो तो शरीर चला जाएगा, कंडम शरीर मिलेगा। कोई कोई तो शरीर ऐसा है कि जीवन भर बोल ही नहीं सकता उस शरीर में, कोई आवाज नहीं, दंड होता है प्रकृति के द्वारा। तो मैं ये कह रहा हूँ, देवता तो हम सबके इंद्रियों पर भी हैं लेकिन दिखाई नहीं पड़ते, तो कंस के कारागृह में आ जाए तो कैसे दिखाई दे, सभी आए। ब्रह्मा भवश्च तत्रेतर मुनिभिर नारदादि, ब्रह्मा और भव ये दो प्रधान हैं, इन दोनों के प्रस्ताव से भगवान अवतार ले रहे, और नारद आदि मुनि शंकरादिक मुनि आदि ये सब थे, इन सब लोगों ने भगवान के अवतार के लिए बहुत प्रयास किया। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि ब्रह्मा जी इस चतुर्दश भुवन के एक प्रकार के कृषक हैं, तो उन्होंने देखा, जैसा वृषणम शब्द आया है, वर्षा करने वाला आ गया गर्भ में, तो चक्रवर्ती पाद जी कहते हैं कि ब्रह्मा जी इस भुवन चतुर्दश के किसान हैं, और उनकी खेती सूख रही थी इस घनश्याम के दिन, वर्षा करने वाले के बिना, जो लीलामृत की वर्षा करेंगे जैसे बंद करेंगे, जैसे किसी किसान की खेती सूखने लगे और बादल छा जाए और यह आशा हो जाए कि अब बादल घमासान वर्षा करेगा, तो किसान कितना खुश होगा, इसी तरह से ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए क्योंकि अब उनकी खेती के लिए घनश्याम आकर के वर्षा करें। ब्रह्मा जी को तो किसान कहा गया, वे बहुत प्रसन्न हो गए और बादल को देख करके घनश्याम को देख करके मयूर नाचते हैं। भगवान शिव मयूर की तरह तांडव नृत्य आदि करने जानते हैं, बहुत नाचते हैं। जैसे मयूर हर्षित होता है बादल को देखकर, ऐसे भगवान शिव हर्षित हो गए जो भगवान गर्भ में आए जब अवतार लेंगे। और श्री नारद आदि ऋषि चातक पक्षी की तरह थे जो बादल की कामना कर रहे थे, जान गए कि हम देवी के गर्भ रूपी रूपी आकाश में या घनश्याम छा गए, अब पानी बरसे हमारे प्यास बुझे। इस तरह से सभी देवता ऋषि मुनि अलक्षित रूप से कंस के कारागृह में आए और आकर के गिरभी भीषणम आयडयन, आयडयन का अर्थ स्तुवन, स्तुति करने लगे भगवान जी। यही है वास्तव में कर्तव्य, भगवान को जो करना है तो करते हैं, लेकिन जीव का धर्म है भगवान का यश गाना। गायन की देवा जगसे मंदो, देवता सदा भगवान का यश गाते हैं।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।
भगवान ने अपना वचन सत्य किया। बहुत वर्ष पहले वे कहे थे आकाशवाणी में, हे देवताओं आप भयभीत मत होइए, ब्रह्मा जी से कहा था मैं अवतार लूंगा, वसुदेव जी की पत्नी देवकी के गर्भ से मैं प्रकट होऊंगा, आप चिंता मत कीजिए। तो जो बहुत पहले वचन दिया था भगवान ने उसको सत्य किया, देवी के गर्भ में आ गए। भगवान के इस सत्य व्यवहार को, सत्य वचन को देखकर देवतागण बहुत संतुष्ट हुए और सबसे पहले सत्य के रूप में भगवान की स्तुति कर रहे, देवता बहुत प्रसन्न है। इसलिए देख रहे हैं इस श्लोक में केवल सत्य 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 लगा, सत्य व्रतम। अंत में कहते हैं वयम शरणम प्रपन्न, हे नाथ हम सब आपकी शरण में हैं। ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ जो शरण में हम हैं, इसमें जो बोल रहे हैं तो सबसे ऊंची आवाज अथवा माइक पर भगवान शिव और ब्रह्मा जी हैं, और देवता लोग ऐसे ही बोल रहे हैं साथ में, लेकिन मुख्य आवाज ब्रह्मा जी की है, शिव जी की, उसके बाद नारद जी। ये सब कहा हम आपकी शरण में हैं, शरण में है, एक बच्चा गर्भ में है और ये देवता उसकी शरण में है। जब गर्भ की स्थिति कैसी होती है, मनुष्यों का बच्चा जब गर्भ में रहता है तो उसकी हालत बहुत खराब रहती है, बहुत खराब। ऐसा लिखा गया है कि अगर बच्चा गर्भ में रहता है तो उसमें माँ यदि कहीं ऊंचा चढ़ती है, खास करके नीचे उतरती है थोड़ा भी, तो लगता है बच्चे को कि आकाश से हम गिर रहे हैं, बहुत ज्यादा उसका अनुभव होता है। इसमें एक्सपेरिमेंट करके देखा गया है और ऋषियों ने भी इसको बताया है, इसमें बच्चे की जो दशा होती है ऐसा लगता है कि बहुत ऊंचा से गिर रहा है, पहाड़ से गिर रहा है। और जब कुछ खाती है तो उसका तीता या खट्टा रस जब बच्चे के शरीर में लगता है तो उसमें बहुत पीड़ा होती है, लगता है उसके देह में कोई सूल चुभा रहा है, एकदम टेंडर शरीर रहता है। इसलिए गर्भवती स्त्री के लिए बहुत नियम बताए गए हैं, जिनसे रहने का खान पान आदि व्यवहार। तो यह तो जीव की दशा होती है, वो गर्भवास जो है एक बहुत भारी कारावास से कोटि गुना दुखद स्थान। तब जरा विचार कीजिए कि संसार के ये सब मुक्त देवता अधिकारी वर और साथ देने में समर्थ, ये लोग एक बच्चे की शरण ले रहे हैं, तो बच्चा विलक्षण है ना। भागवत पढ़ने वाला कोई भी बुद्धिमान आदमी समझेगा ये क्या बात है भाई, कि सारे देवता आकर के देवकी नंदन की शरण ले रहे हैं, देवकी के पुत्र की शरण ले रहे हैं, क्या बात। और ये सब कथा सुनने के बाद भी कोई संशय करे और ये कह दे कि हाँ हाँ जैसे शिव जी हैं ब्रह्मा जी हैं वैसे ही विष्णु हैं कृष्ण हैं, कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं है, तुमको दिमाग ही नहीं है कुछ भी समझ में, क्या करें। अब ये भागवत पढ़ पढ़ करके ये लोग नहीं समझते, भगवान चाहे गर्भ में रहें चाहे वैकुंठ में रहें या वृंदावन में रहें, कहीं भी भगवान भगवान है, उनकी शक्तियां उनका प्रभाव जीव का तेव रहता है। गर्भ में भी रह रहे थे तो वैकुंठ में ही थे, माँ का गर्भ वैकुंठ बन गया देवता लोग शरण ले रहे तो कहते हैं सत्यम व्रतम संकल्प जस्य तम, भगवान का संकल्प सदा सत्य होता है। सम का अर्थ होता है सम्यक और कल्प का अर्थ होता है इच्छा, संकल्प। और प्रत्येक जीव अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प से भरा हुआ है। संकल्प का अर्थ होता है कुछ अनुकूल भाव से सोचना, कुछ पाने के लिए अच्छा है इसको संकल्प कहते हैं, और ये अच्छा नहीं है हमको नहीं चाहिए इसको विकल्प कहते हैं। विपरीत कल्प और सम्यक कल्प, कल्प वृक्ष कहते हैं एक वृक्ष बोलते उसका इच्छा वृक्ष अपनी इच्छा को पूरा करता है। तो भगवान का व्रत सदा सत्य होता है, भगवान का संकल्प सदा सत्य होता है, जो सोचते हैं उसी समय हो जाता है, उनके सोचने में और कार्य होने में देर नहीं होती। परंतु इसके अलावा देवताओं का या मनुष्यों का सोचना और कार्य होना दोनों दो है, और सोचेंगे संकल्प करेंगे 99% 100% तो उसमें 1% भी काम हो नहीं पाता। जितना संकल्प जीव को उठता है उसमें से तो संकल्प पूरा नहीं हो सकता। संकल्प तो छोड़ दीजिए, वो प्लान बनाएगा बहुत उपाय करेगा फिर भी पूरा नहीं होता। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत बड़े पद पर है और कहीं उसका प्रोग्राम है, हेलीकॉप्टर से जा रहा है, लेकिन प्रोग्राम स्थल पर लोग जो होते बेदम होते हैं, प्यास लगी रहती है, टाइम दिए हैं 12 बजे पहुंचने का, तो साहब 7 बजे शाम को पहुंचते हैं। फिर ये संतोष हो जाते चलो इस कारण से लेट हो गया, फ्लाइट लेट हो गया, ये लेट हो गया, वो लेट हो गया, तो संकल्प तो सत्य हुआ नहीं। असत्य व्रतम, इस संसार के सब लोग ऐसे हैं, संकल्प पूरा नहीं हो सकता है क्योंकि मनुष्य के ऊपर प्रकृति का दबाव है। कोई आदमी बड़े बड़े शहरों में निकले कि हमको वहां जाना है, ऑफिस में जाना है, इस टाइम जाना है, तब तक उसको कंट्रोल करने लगता है ट्रैफिक लाइट और जाम, और वो क्या करे अपनाता है कुछ भी, पुलिस विभाग को ट्रैफिक विभाग को गाली दे मन ही मन चाहे कुछ भी करे, लेकिन इतना प्रकट काम नहीं हो पाता है। और क्या कोई काम करेगा, किसी को शक्ति है मनुष्यों में वो कह दे कि ठीक है आप हमको चाहते हैं तो हम अगले जन्म में आपके घर आ रहे हैं, ये पता है कि हम कहाँ जन्म लेंगे, कहाँ जन्म लेंगे पता है, ये भी पता नहीं था कि हम लोग यहाँ जन्म लेने वाले हैं, अपनी स्थिति का पता नहीं, क्या सत्य संकल्प होगा। भगवान सत्य संकल्प, हे कृष्ण हे नाथ आपका व्रत सदा सत्य होता है और आपकी प्राप्ति का साधन सत्य है। भगवान इन देवताओं के कहने का आशय है कि हे प्रभु आप भक्ति से प्राप्त होते हैं, इसीलिए भक्ति योग सदा सत्य है, बाकी दूसरे साधन असत्य है। भगवान का नाम गुण लीला का कीर्तन करना श्रवण करना वास्तव में यही सब सत्य है, बाकी सब असत्य है। किसी कार्य का भगवान सत्य साधन से मिलता है, अर्थात भगवान की प्राप्ति के जो साधन शास्त्रों में बताए गए हैं श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाठ सेवनम इत्यादि, यही सत्य है। त्रिसत्यम, हे प्रभु आप सृष्टि से पहले भी इसी रूप में थे, अपने लीला परिक्रमा के साथ वैकुंठ में विहार कर रहे थे, सृष्टि जब होती है तब भी आप अपने धाम में रहते हैं और सृष्टि नष्ट हो जाती है तब भी आप अपने धाम में रहते हैं। सृष्टि स्थिति प्रलय यहाँ होता है, भगवान के धाम में नहीं होता, इसको त्रिसत्यम कहते हैं। वैसे रहने के लिए तो हम लोग भी रहेंगे। इस जन्म के पहले भी हम लोग थे और बाद में भी रहेंगे, लेकिन इस रूप में नहीं रहेंगे। शरीर बदल जाएगा, स्वभाव बदल जाएगा, भाषा बदल जाएगी, सब कुछ बदल जाएगा। हम रहेंगे लेकिन व्यभिचारी रूप से रहेंगे। भगवान अव्यभिचार देवत नित्य एक समान रहते हैं। तो सबसे पुरातन पुरुष है, अनादि काल से हैं, लेकिन भगवान के परिवार में एक व्यक्ति भी आज तक मरा नहीं। त्रिशक्ति भगवान के पिताजी पिताजी रह गए, माँ माँ रह गई, और जिसके पुत्र हैं पुत्र रह गए वैकुंठ में। वैकुंठ में एक भी व्यक्ति परिवार से अलग नहीं होता है। सत्य की जो नहीं है, सत का अर्थ है भूमि जल अग्नि, और त्य का अर्थ है वायु और आकाश, सिद्ध स्वामी ने अर्थ किया। तो भगवान सत्य के सत्य की योनि है, इस जगत को उत्पन्न करते हैं और इसको उत्पन्न करके फिर परमात्मा रूप से उसमें निवास करते हैं। निहितम च सत्य, इस विश्व के भीतर निवास करते हैं। हे नाथ, अब सत्य के ही सत्य हैं, सत्यस्य सत्यम्, सत्य के भी सत्य हैं, और आप ही समदर्शी हैं। एक दृष्टि से, एक भाव से सबको देखने वाले आप हैं, अथवा किसी वस्तु के वास्तविक तत्व को समझने वाले आप हैं, और किसी वस्तु के किसी तत्व का निरूपण करने वाले भी केवल आप हैं। आपके अतिरिक्त यथार्थ बोलना कोई नहीं जानता है, और आपके अतिरिक्त कोई ऐसा नहीं है जिसको किसी वस्तु का, अपना, जगत का या आपका यथावत ज्ञान हो। इसको कहते हैं ऋत सत्य नेत्र। नेत्र का प्रवर्तक है ना, आप ही ठीक ठीक बोलना जानते हैं, और दूसरा कोई व्यक्ति क्या बोलेगा, ज्ञान ही नहीं है तो बोलेगा क्या। और ज्ञान भी होने पर कितना शब्द बोलना चाहिए उस विषय में, कैसे प्रकट करना चाहिए, उसको भी नहीं जानता। ये भगवान प्रमाण है किसी चीज का रहस्य जानने में और उसका निरूपण करने में। सत्यात्मक सत्यम आत्मा श्री मूर्ति यस्य स, भगवान का श्री विग्रह सत्य है, सत्यात्मा कहते हैं भगवान। आत्मा का अर्थ होता है स्वरूप। भगवान के देह में और उनके स्वरूप में भेद नहीं है। जीव के देह में और जीव में बहुत भेद है। जीव देह को छोड़कर चला जाएगा, देह यहाँ नष्ट हो जाता है, लेकिन श्री भगवान का ऐसा स्वरूप है कि कभी देह छोड़ नहीं सकते, क्योंकि वो देह ग्रहण नहीं किए। देह देही का भेद नहीं है। नक्ष से सिख तक श्री कृष्ण पूर्ण चिन्हगण है, चिन्मय है, इसको सत्यात्मा को सत्य सत्यात्मक शरण प्रपन्न है। तो हम सब आपकी शरण में हैं। जैसे दो चार बच्चे अपने माँ से, पिताजी से विनय कर, उस तरह से देवता लोग भगवान की शरण ले रहे। भागवत के प्रत्येक श्लोक में भगवान की महिमा गाई गई है। देवता लोग आया करके भगवान की शरण ले रहे हैं, जो भगवान गर्भ में है। देवता लोग शरण ले रहे हैं, लेकिन मूर्ख मनुष्य लोग क्या बोलते हैं, भगवान हो करके वो गर्भ में कैसे गए। कल को ऐसी बात याद आती है कि वो जब गर्भ में जा रहे थे तो तुम नहीं थे, नहीं तो पूछे होते कि कैसे जाना चाहिए। जो किसी का पुत्र हो सकता है तो वो भगवान कैसे है। जाकर के ब्रह्मा जी से तर्क करो कि वो पागल हो गए हैं, शिव जी पागल हो गए हैं, क्या बात है। अपनी मूर्खता व्यक्ति नहीं समझता है। यदि यह कोई कहे कि वसुदेव जी का पुत्र कैसे भगवान है, देवकी का पुत्र कैसे भगवान है, तो यह प्रकारांतर से ब्रह्मा जी को मूर्ख कह रहा है, ब्रह्मा जी को पागल कह रहा है, शिव जी को पागल कह रहा है, ब्रह्मा जी को पागल कह रहा है, नारद जी को भी भटका हुआ कह रहा है, और अपने को महापंडित समझ। यहाँ भगवान की शरण ले रहे हैं सारे देवता। तो जब सारे देवता भगवान कृष्ण के ही कृष्ण की शरण ले रहे हैं, भक्त हैं, तब क्यों नहीं भगवान की ही भक्ति करनी चाहिए। यह विवेक है। शरणम प्रपन्न, हम सब आपकी शरण में हैं, प्रपन्न है, हमारी रक्षा कीजिए। तो इस पर मानो भगवान यह कहें, अरे भाई आप लोग भी तो लोकेश्वर हैं, बहुत ईश्वर आप लोग भी हैं, संसार की देख रेख करते हैं, कमांड करते हैं, कंट्रोल करते हैं। तो देवता लोग कहते हैं नहीं नहीं हे नाथ, हम कुछ भी नहीं करते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं। तो इस सारे विश्व को एक वृक्ष के रूप में कह करके ये कहते हैं, एकायनौ विफलस त्रिमूलस चतुरस पंचविधा सदात्मा सप्तत्वगष्ट बिटको नवाक्ष दश छो दिखो यद वृक्ष। यह संपूर्ण समष्टि व्यष्टि जगत एक अयन पर टिका हुआ है, एक अयन प्रकृति जस। यह सारा विश्व बना कैसे है, भगवान की एक शक्ति से बना है जिसे प्रकृति कहते हैं। जो कोई वृक्ष है कहीं न कहीं खड़ा रहता है, इसको आल बाल या थाला कहते हैं वृक्ष। तो यह संसार कहाँ टिका है, किससे बना हुआ है, तो प्रकृति ही इसका अयन है, एकायन दुई फल। और इस संसार वृक्ष के दो फल है, सुख और दुख। प्रत्येक व्यक्ति इस फल को भोगता है पूरे संसार में, चाहे स्वर्ग हो या पाताल लोक हो, नीचे का लोक हो या कहीं, दो तरह के फल सब जगह मिलते हैं सबको, सुख और दुख। कभी कभी व्यक्ति अनुकूल भाव से सुख का स्वागत करता है, कभी कभी छटपटाता है, होता है दुख होता है। स्वर्ग में भी सब समय सुख नहीं रहता है, वहां भी कभी कभी दुख का फल भोगना पड़ता है। तो नरक में जाना पड़े किसी कर्म के कारण, तो स्वर्ग में जाना पड़े और अमृत पीने को मिले, विमान पर घूमने को मिले, इसको फल क्यों कहा गया? फल का अर्थ है परिणाम, रिजल्ट। प्रत्येक कर्म का फल बनता है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ड्राई फ्रूट चाहे गीला फ्रूट बनेगा। प्रत्येक कर्म का अपना एक रिजल्ट होता है जिसको फल कहते हैं। ये दो प्रकार के फल, सुख और दुख। एकाए नौ सौ विफल त्रिमूल, तीन इसके मूल हैं, सतगुण रजोगुण तमोगुण, तीन इसकी जड़ें हैं संसार वृक्ष के, इसी पर टीका है चतुरस, और इसके चार रस हैं धर्म अर्थ काम मोक्ष। इस शरीर से या इस संसार में ये चार चीज कमाया जा सकता है, धर्म किया जा सकता है, इसे स्वर्ग कमाया जा सकता है, और फिर धर्म के अनुसार रुपया पैसा, घर द्वार, इंद्रिय तृप्ति और अंत में मोक्ष। इसको चार रस कहा गया, चतुरस पंच विध। विध का अर्थ होता है ज्ञान प्रकार, पांच तरह से इस संसार को जाना जाता है, इस संसार के पांच प्रकार है इसको जानने के। इसके शब्द को जानते हैं कान से, इसके गंध को जानते हैं नासिका से, रूप को जानते हैं आंख से, और इसके स्पर्श को जानते हैं त्वग इंद्रिय से, और इसके रस को जानते हैं जीवा से। इस संसार के पांच ये विषय हैं, जो शब्द रूप रस गंध स्पर्श, प्रत्येक जीव को इंद्रियां दी गई हैं संसार का अनुभव करने के लिए। इस संसार को जानने के पांच प्रकार हैं, षडूर्मय, पंचविधा, षडात्मा, और इसकी छह उर्मियां हैं या इसके छह स्वभाव है। आत्मा का होता है स्वभाव। इस संसार में प्रत्येक शरीर या लोक के छह स्वभाव ये रहेगा। इस स्वभाव क्या स्वभाव है? पहला एक तो स्वभाव है कि यह जन्म लेगा। कोई चीज संसार में भगवान के द्वारा रेडीमेड नहीं आती है, और जिसको इस संसार में रेडीमेड कहते हैं वह अभी दुकान में रेडीमेड रहता है, अभी कहीं कहीं बनाया जाता है, उसके पहले रेडीमेड नहीं रहता है ना, पहले रेडीमेड नहीं रहता है। ये शरीर खास करके मिलता है जीव को, तो कहीं भी रेडीमेड शरीर नहीं है, उसको बनने में बहुत टाइम लगता है गर्भ में, और फिर जन्म लेने के बाद भी जो पियो या दवा खाओ ये करो, और बीच बीच में बीमार हो जाता है तो फिर अस्पताल में इसकी मरम्मत होती है। जो भी हो जन्म लेना है इसका स्वभाव है, जायते सुजन्म कहते हैं और वर्धते और वृद्धि को प्राप्त होता है, बढ़ता है, जन्म लेकर के बढ़ता है। जैसे वृक्ष पाला अंकुरित होता है, पौधा होता है, फिर बढ़ने लगता है। तो इस तरह से शरीर या पूरा देश धीरे धीरे बनता है और बढ़ता है, भी परिणमते और कुछ इसके परिणाम होते हैं, फल देता है, बच्चा उत्पन्न करता है। बढ़ना और विपरिणत होना दोनों में अंतर है। इस शरीर से कितने भी परिणाम निकलते हैं, जैसे केश है, इस शरीर से केश निकलता है, नख निकलता है। यदि नखों को आप काटिए और पूरे जीवन का नख जोड़ा जाए तो कई फीट लंबा हो जाएगा, सबको रखा जाए काट काट करके साथ साथ दस दस दिन पर एक कई फीट लंबा नख हो, इस शरीर से नख निकलते, केश निकलते। और केश को भी यदि ठीक से रखा जाए तो ये तो कई मीटर बढ़ सकता है। चला गया एक बार और शरीर में भी बहुत से परिणाम हैं, और जो मल मूत्र आदि वो भी शरीर के परिणाम, तो बच्चा आदि सब परिणाम। तो कोई शरीर कुछ काल तक रहता है, हाँ ये परिणाम देता है, और तिष्ठते जन्म से मृत्यु तक जो स्थिति है उसको तिष्ठन करते हैं, ठहरता है, और अंत में स्वभाव है छीयते, क्षय होता है, शरीर अंत में छीण होने लगता है, इसको बुढ़ापा कहते हैं, धीरे धीरे छीण होने लगता है, अंत में नश्यति नाश समाप्त। तो इस संसार का एक छह स्वभाव है, देवता लोग कह रहे हैं सदात्मा। यह आत्मा का अर्थ उर्मीय किया जाएगा तो इस संसार का स्वभाव है जन्म मृत्यु भूख प्यास और शोक मोह, इस छह स्वभाव। जन्म होता है और मरना पड़ता है, ये तो दो आत्मा विकार, और भूख और प्यास लगे, सबको भूख प्यास लगती है, जन्माष्टमी पर तो अनुभव करते ही होंगे कि जान बुझ करके सहना चाहिए। अच्छा, जानते हैं उपवास की सबसे बड़ी महिमा क्या है? उपवास की सबसे बड़ी महिमा है कि अन्य सारी कामनाएं चली जाती हैं, जो कामनाएं बड़े बड़े साधनों से नहीं जाती वो उपवास करने से चली जाती है। जो दो दिन आदमी को कुछ खाने पीने को न दिया जाए तो खाने पीने के अलावा कोई कामना उसके मन में नहीं रहेगी, और प्लान और विचार सब खत्म हो जाता है, केवल यही सोचा रहे पानी पीने को, दो खाने को कुछ। तो उपवास में यह गुण है, सचमुच उपवास करना चाहिए। कोई कहे कि आखिर खाने की इच्छा तो बनी रहती है, तो केवल यही इच्छा बनी रहेगी ना, और उसको उसकी पूर्ति करनी नहीं है, और तो कामना नहीं रहेगी। एक कामना इतनी प्रबल हो जाएगी कि अन्य कामनाओं को जला, बहुत शुद्धि होती है और पाचन संस्थान को भी आराम मिल जाता है, शरीर में जो पचाता रहता है मशीन रात दिन उसको भी आराम मिल जाता है, विश्राम मिल जाए उसको तो ठीक है। सप्तत्व और इस संसार वृक्ष के सात धातुएं हैं, रक्त मांस मज्जा मेद हड्डी बीज, यानी सब सात धातुएं मान जाते हैं। तो अष्ट बीटक और संसार वृक्ष के आठ पत्ते हैं, आठ प्रकार, पंच महाभूत और मन बुद्धि अहंकार आठ पत्ते हैं, नवाक्ष इसके नौ द्वार हैं, इस वृक्ष में नौ खोड़ा रखे कोटर है, जिससे शरीर में नौ छेद हैं, सामने भगवान ने बनाया है पांच, दो आंख दो नाक और एक मुंह, पांच और दो साइड में सात और दो नीचे, इसको नवाक्ष कहा गया। और दशक छवि इसके 10 प्रकार के पत्ते हैं और मैं विटका कहा उस समय शाखा है इसकी 8 प्रकार की है, 8 शाखाएं हैं और 10 पत्ते हैं, 10 प्रकार के पत्ते हैं। प्राण अपान ध्यान उद्यान त्रिकलास पूर्ण धनंजय सब कई प्रकार के प्राण हैं शरीर में, तो इनको इसके 10 पत्ते कहे गए। उन्हीं पत्ती का है पत्ता झड़ा के जादी मन पविषे उड़ जाये तादी तेरे तन तरवर के सबय पाक झड़ जाये, ये सूरदास ने गाया। ये प्राण पर ही टीका हुआ है, हवा पर शरीर टीका हुआ है, 10 प्रकार की हवा कंट्रोल कर रहे कर रहा है शरीर। द्वि खग और इस संसार वृक्ष पर इस शरीर में 2 खग रहते हैं, एक परमात्मा और एक आत्मा, 2 खग। खग इसलिए कहा गया है कि इस वृक्ष गिरेगा तो वो लोग तो आकाश गामी है ही, ख में चलने वाले होते हैं तो वो तो उड़ जाएंगे, उड़ जाएंगे, जीव भी उड़ जाएगा, भगवान तो खैर इसमें असक्त है ही नहीं। बराबर प्राण की उपमा या आत्मा की उपमा पक्षी से दी गई, पक्षी जैसे प्राण पर से उड़ जाता है ऐसे ही आत्मा उड़ जाएगा। का कर्म पाई पाई राई राई जोड़ के उड़ जाए सुगना की जड़वा के छोड़, जैसे वृक्ष कहा जाता तो वो भी अच्छा होता है, पिंजरा कहा गया है, पिंजरा में जैसे सुगा पक्षी बंद है एक दिन उड़ जाएगा और पिंजरा क्या होगा, ऐसा नहीं कि दूसरे सुगा के लिए रखा जाएगा, इसको जला दिया जाएगा, चाहे मिट्टी में डाल दिया जाएगा चाहे पानी में फेंक, और सुगा गया दूसरे पिंजरा में, कर्म बंधन है तब तो, मुक्त हो गया तब तो फ्री घूमेगा, कोई पिंजरा की कोई देखो याद वृक्ष, यह आज वृक्ष है, वृक्षते काले न छिद्यतो के वृक्ष, वृक्ष को इसलिए वृक्ष कहते हैं कि वह काटा जा सकता है। इसी तरह से संसार का एक नाश होता है, नष्ट होता है, चाहे शरीर हो चाहे पूरा विश्व हो। तो तुम्हें कई वास सतह प्रसूति तमसन निधानम तमनु ग्रहश्च, हे नाथ केवल आप ही से इस जगत का प्रकृष्ट प्रसव हुआ है, आप इसको जन्म देते हैं और आप इसको संयम में रखते हैं, पूरे विश्व को, विश्व से मतलब विश्व के जितने जीव हैं सबको आप जन्म देते हैं, खिलाते पिलाते पालते हैं पोसते हैं और अंत में समाप्त करते हैं। भगवान कहेंगे नहीं और लोग भी तो कुछ करते हैं इसमें सहयोग करते हैं, तभी कहते हैं नहीं त्वं माया समृच्छेत्सस्त्वं पश्यन्ति नाना नविपश्यतोरे, जो आपकी माया से मोहित हैं वही लोग कहते हैं कि शिव जी भी करते हैं ब्रह्मा जी भी करते हैं इंद्र करते हैं, लेकिन जो ज्ञानी है समझते हैं कोई कुछ नहीं कर रहा है केवल विष्णु ही सब कुछ करता है। तो हम एक आवास सतह प्रसुप्ति स्तंसन निधान तमन ग्रहस, केवल अकेले भगवान पोष रहे हैं वास्तव में, किसी भी व्यक्ति को अभिमान नहीं करना चाहिए मैं चला रहा हूँ परिवार या देश या ये, क्या कोई चला रहा है, संसार चलाने के लिए सूरज की बहुत जरूरत है, सूर्य से गर्मी मिलता है प्रकाश मिलता है, तो सूरज की व्यवस्था में मनुष्यों का कितना हाथ है बताइए, कितना हाथ है, केवल प्रकाश लेने का अधिकार है ना, ले सकते हैं या ऊष्मा ले सकते हैं, लेकिन सूरज में गर्मी बनी रहे ये बेचारा ठंडा ना हो जाए इसके लिए क्या यहाँ से पेट्रोल जाता है। किसी दिन भगवान ने नोटिस भेजे कि अब सूरज की ऊष्मा समाप्त होने वाली है, इतना दिन मैं चलाया है मनुष्य अब तुम लोग चलाओ, वो सारी दुनिया के लोग मीटिंग कर रहे हैं, रशिया के लोग अमेरिका के बाहर सब जगह, तो भाई कुछ उपाय किया जाए, सूरज ठंडा होने वाला है ठंडा होने वाला है, क्या करेंगे कुछ नहीं कर सकते। अरे वो तो छोड़ दीजिए सूर्य ठंडा होने वाला है, ये कहा जाए कि सूर्य डूबता है एक दिन रोको डूबने मत, कितना दिन तो है यह रूटीन चला ही अब कुछ चेंज करना चाहिए, कभी सूर्य को आज 2 घंटे के लिए रोक, तो हमारा कोई बहुत बड़ा काम है प्रकाश की बहुत जरूरत है, क्या कोई सूर्य को रोक पाएगा, नहीं रोक सकता, बहुत तेज रफ्तार से सूर्य चलता है, किसकी व्यवस्था, हवा चल रही है, हवा उत्पन्न करने में या पूर्वया हवा चलेगी कि पश्चिया चलेगी कि बिल्कुल गर्मी बढ़ जाएगी कि तूफान चलेगा, इसमें मनुष्यों का क्या है, क्या अधिकार, क्या पावर है? मुझे ही पावर नहीं है। ये देखा है भगवान चलाते हैं तो कहते हैं प्रतिकूल हवा इतनी है, अनुकूल हवा इतनी, तो हमेशा अनुकूल हवा क्यों नहीं कर रहे हैं? प्रतिकूल हवा में विमान कुछ कम गति से चलता है, जिधर जा रहा है विमान और उधर से ही हवा चल रही है तो गति कुछ अवरुद्ध होती, कम स्पीड से चलता है, और जिधर जाना है उसी की तरफ हवा जा रही है तो विमान की गति ही बढ़ती है। पर कोई शक्ति है मनुष्य में कि उसको विमान का अनुकूल बना ले हवा को? नहीं बना सकते। तो इस तरह से वास्तव में देखा जाए तो एक एक जीव का पालन भगवान कर रहे हैं, कोई नहीं कर रहा है। जन्म भी वही कर रहे हैं, पाल रहे हैं, पोष रहे हैं। तमे क्रिया से स्वतः प्रसूति तम संविधानम तम अनुग्रह तम संविधानम सम्यक निधीयते अस्मिति संविधानम। जहाँ कोई चीज रखी जाता है प्रलय और अनुग्रह करते पालन प्रसूति का जन्म, एक केवल आप जन्म देते हैं, केवल आप पोषते हैं और आप ही संहार करते हैं, कंट्रोल में रखते हैं, तब भगवान कहते हैं ननु माम देवकी पुत्रम कथम एवं बद्ध। अरे मैं देवकी का पुत्र हूँ और गर्भ में निवास कर रहा हूँ, आप मेरे लिए इतना बड़ा बड़ा पद क्यों कह रहे हैं कि मैं पूरे विश्व की रचना कर रहा हूँ, मैं चला रहा हूँ, मैं तो देवकी का पुत्र है। तो देवता लोग कहते हैं हाँ हाँ विभर्ष रूपाणो बोधे आत्मा क्षमा लोक से चरा चरस्ते सत्तों को पन्नानी सुखा बहानी सता में भद्राणी मुहु कलाना। हाँ हमें मालूम है कि आप कभी कभी इस विश्व की रक्षा के लिए अपना शरीर प्रकट करते हैं, किसी माँ के गर्भ से या जैसे तैसे आप प्रकट करते हैं, तो वास्तव में आप परब्रह्म हैं, भगवान हैं, जगदीश्वर हैं, और देवकी जी को ये आप सौभाग्य दिए हैं उनके पुत्र रूप में जन्म ले रहे हैं, लेकिन वास्तव में आप किसी के पुत्र नहीं हैं, तभी आपके पुत्र हैं। जब गीता में भगवान बोल रहे हैं कि सर्व जोनि सुख कौन थे अमूर्तया संभवंत यह ताशम ब्रह्म महत्वनि रहम बेज प्रदर्शिता, यह बात यदि अर्जुन जाकर के अपने मामा से वसुदेव जी से कहते, कृष्ण तो ये कह रहे हैं कि मैं ही सबका बाप हूं, और यह तो खुलम खुला सब वो कहते थे कि कृष्ण ब्रह्मा जी के बाप हैं, सभी देवताओं के बाप हैं, तो क्या कोई अभी जाकर कह सकता था कि वसुदेव जी आप सावधान हो जाइए, कृष्ण कहते हैं कि वसुदेव जी हमारे पुत्र, वसुदेव जी इसको नहीं मान सकते थे, लेकिन वास्तविकता यही है कि सभी कृष्ण के पुत्र हैं। परंतु कृष्ण को यदि अपने पुत्र के रूप में प्यार करने चाहते हैं तो भगवान पुत्र बन जाते हैं, यह भी उनका स्वरूप ही है, लेकिन तत्वतः उनसे सबका जन्म हुआ है, वही पालन करते हैं। और जब भगवान इस जगत में आते हैं तब भगवान का वह रूप असुरों के लिए बड़ा भयानक होता है, परंतु साधुओं के लिए सुखा बहाने सुख लाने वाला है, भगवान का दर्शन करते हैं, गुण गाते हैं, खुश होते हैं, और जो असुर हैं दुष्ट हैं उनके लिए भगवान का रूप बड़ा भयावह होता है, ये पसंद नहीं करते। श्रीमद् भागवतम में ऐसा वर्णन बार बार आया है कि भगवान कृष्ण से विरोध करके बल्कि उनको मारने के लिए राजाओं की मीटिंग जहां तहां चलती रहती है। भगवान रुक्मिणी जी को जब ले गए तो राजा लोग आपस में लगे नारा बोलने, अरे हम लोगों के रहते रहते वो ग्वाला ले गया रुक्मिणी को, धिक्कार है हमारे बल और पौरुष को, वह वैसे हम लोगों के बीच से ले गया जैसे सिंहों के बीच से हरिण कुछ ले गया, ऐसा बोल रहे। मतलब सब तो सिंह ही जुटे थे, शिशुपाल सिंह, जरासंध सिंह, सब सिंह ही थे, सिंहों के बीच से हरिण अपना भाग ले जाए, नहीं सिंहों के भाग को हरिण ले जाए वैसे आया और रुक्मणी को ले गया धिकार धिकार, तब क्या किया जाए? ऐसा करे अब युद्ध करे और युद्ध करके रुक्मणी को छीन रहे हैं। नोटा, चलो 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 मारो। और श्री सुखदेव गोस्वामी क्या कहते हैं, वहां भगवान जब रुक्मणी जी का हरण किए तो सुखदेव जी कहते हैं, जैसे सिंह अपना भाग सियारों के बीच से ले जाए वैसे भगवान ले जाए। और वो लोग कहते हैं कि सिंहों के बीच से जैसे हरण ले जाए कुछ चीज वैसे लेकर के चला गया। और वो भी सिंह सब धनुष बाण लिए हुए बैठे थे, हरण ले गए। वो लोग ये कहते हैं अद्भुत अद्भुत अपना अपना कंसेप्शन है किसी के विषय में। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं सियारों के बीच से सिंह जैसे अपने भाग को ले गए वैसे भगवान ले गए रुक्मणी को। तो प्रश्न होता है सुखदेव गोस्वामी उन राजपूतों को सियार क्यों कह रहे थे? सियार इसलिए कह रहे थे जैसे सियार, एक सियार हुआ हुआ बोलता है तो दूसरे भी बोलते हैं हुआ हुआ, तो वे सब हुआ हुआ कर रहे थे, धरो धरो पकड़ो पकड़ो हुआ हुआ, लेकिन तो कृष्ण सिंह चले गए हुआ हुआ हवा हुआ, हमारे तुम कहाँ थे तुम कहाँ थे, कहाँ ले गया, अभी तो यही गया होगा, दौड़ो 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 दौड़ो। सब तो एक बार गिर गए थे रुक्मणी जी के सौंदर्य को देखकर, तो मुकुट सीधा करने में पोशाक पहनने में देर हुई, तब तक तो असली सिंह अपना भाग लेकर के निकल गया। और जिन लोग तैयार हुए लड़ने के लिए चले, तब तक जादुओं की सेना सामने खड़ी थी, भगवान जी लीडिंग कर रहे। इसके बाद लोग बुरी तरह से मारे गए, हुआ हुआ नहीं करते तो चुपचाप हो गए होता नहीं, बहुत हुआ हुआ करते। वास्तव में वो लोग जब बोले होंगे अरे ले गया हुआ हुआ, तो सुखदेव गोस्वामी को याद आ रहे सिया आर बोल रहे हैं। ये बोल कर करेंगे क्या? मान लीजिए सिंह कोई चीज लेकर के चला हो जो पशु को मार करके अपना भाग, और हजारों सियार हुआ हुआ करे उसको देख करके, तो क्या कर पाएंगे? कुछ भी नहीं करता, उसे निकट नहीं जा सकते। ऐसे ही सियार लोग बोल रहे। मैं किस बात पर एक कथा ला दिया, लिंक बन गया। तुम्हें कहवा सतह को सुपिश तुम सन निधान है, तुम्हें विभर्ष तुलमा या समृद्ध ये विभर्ष रूपण है, अवबोध है आत्मा क्षेमा है लोक सचरा चरस्य। तो मैं यह कह रहा हूँ कि भगवान इस विश्व की रक्षा के लिए अवतार लेते हैं, विविध रूप धारण करते हैं, और अवबोध है आत्मा उनका स्वरूप अवबोध है, ज्ञानिक मूर्ति है, चिदघन है, तो यह बात ये कह रहा था। भगवान के विषय में अनेक प्रकार के कंसेप्शन होते हैं, विचार होते हैं, कोई कुछ सोचता है कोई कुछ सोचता है, लेकिन वास्तव में सुखदेव गोस्वामी जैसे आचार्य जो बोलते हैं कृष्ण के विषय में वही परफेक्ट है, वही ठीक है। भगवान कभी कभी प्रकट होते हैं, किसी को स्वीकार करते हैं अपने माता पिता के रूप में, और वे जीव बहुत ही उच्च कोटि के साधक होते हैं, सिद्ध होते हैं, जो भगवान का भजन पुत्र भाव से करते हैं। कृष्ण हमारे पुत्र हैं, हम उनकी माँ हैं, हम पिता हैं, तो भगवान ऐसा सुयोग देते हैं। हाँ, ये बोल रहा था कि भगवान का जो स्वरूप है वो खलों के लिए बहुत भयावह होता है। यहाँ मैं बोल रहा था कि भगवान कृष्ण जब थे इस पृथ्वी पर तो उनके विरुद्ध ज्यादा मीटिंग चलती थी। जहां तक श्री रुक्मणी का हरण किया तो उसके बाद मीटिंग चले, और राजा लोग यही पहला प्रस्ताव डालते थे कृष्ण है कहाँ इस समय। जरासंध बहुत खुश रहता था, कहता था मैं तो उसको घर से निकाल दिया, उसको जन्मभूमि से भगा दिया, मथुरा से मेरे भाई से मथुरा छोड़कर भाग, उसका दिमाग मथुरा में रहता था, कौन से मार दिया गया इसलिए जरासंध बहुत कुपित हो गया। वो प्रचार करता रहता था कि हमारे घर भाई से कृष्ण भाग गया, अपने घर जा छोड़कर भाग गया, और ऐसा भागा कि पृथ्वी छोड़कर के एकदम समुद्र में रहता है, गुजरात में जाकर के समुद्र में रहता, जमीन कहीं नहीं मिले उसको। भगवान की भी अद्भुत लीला है, मथुरा छोड़े तो एक सिंधु के तीर चले गए। तो इसको कायरता कहते थे, देखो इतना डर करके भाग गया, भाग गया, भाग तो गया, लेकिन इसके बाद पहली मुठभेड़ रुक्मिणी जी के विवाह में हुई इन लोगों से। और सब झूठ, जितने हुड राजा थे बदमाश थे, वो सब झूठे हुए थे कि कृष्ण आएगा जरूर। उन लोगों को पता चल गया था कि रुक्मिणी कृष्ण में आसक्त है, और विवाह तय हो गया था। खूब अच्छी तरह से बारात आ गई थी, शिशुपाल के साथ विवाह होना निश्चित हुआ। यद्यपि भीष्मक जी अपनी पुत्री का विवाह कृष्ण से करना चाहते थे, लेकिन एक भाई था रुक्मिणी जी का, वो इन लोगों के पार्टी में था, मिला जुला था, और जरासंध कह दिया था कि नहीं, रुक्मिणी से विवाह शिशुपाल जी का होगा, उसे कोई नहीं कर सकता, मैं कराऊंगा ना, मैं हूं ना। तो वो तो बुरी तरह से परास्त हो जाता। इसलिए भागवतम में यह वर्णन है कि जब भगवान ले गए रुक्मिणी जी को, तो शिशुपाल बहुत खिन्न हो गया बेचारा। कई महीनों से आशा रखा होगा कि रुक्मिणी के साथ मेरा विवाह होगा। जब राजा लोग जुटे हुए थे, टेम्पोरी तंबू आदि लगा हुआ था टेंट, लड़ने के लिए वो नहीं गया था। भगवान रुक्मिणी को ले गए तो वो तो बेचारा दूल्हा बनकर बैठा था, इसलिए वो लड़ने नहीं गया। बाद में कई लोग मारे गए, जरासंध भी हार करके भाग आया। जब भाग आया हार करके, तो आया सबसे पहले, मैं जितने लोग बचे हैं वो तो जाओ गांव पर, जो मरे हो तो मरे, अब कौन विवाह की सोचने जाए। जो जीवित हैं, जिनको घायल घायल हुए हैं उनको अस्पताल भेजना, जीवित को घर पर भेजना, कैसे कैसे। तो आया तो शिशुपाल तो रो रहा था, रो रहा था और बहुत क्रोध में भी था। विवाह मेरे साथ निश्चित हुआ और ऐसा कैसे किया। तो उस समय जरासंध का वाक्य दिया गया भगवत, वो कहता है शिशुपाल जी, आप इतनी छोटी बात के लिए और इतना खिन्न हो रहे हैं। अरे आप क्षत्रिय हैं, और ये हार और जीत होती रहती है, कोई बात नहीं। वास्तविक बात है शिशुपाल जी कि ये विवाह जो है वो लिखा होता है प्रारब्ध में, लल्ला की ये लिखा नहीं था। असली बात ये आपके ललाट में नहीं लिखा था रुक्मिणी से विवाह होना, तो इसलिए यह सोच करके आप शोक मत कीजिए, लिखा ही नहीं था तो क्या किया। ये दूसरी बात है, वो कहा कि लेकिन हमको इस बात का दुख है कि कृष्ण हम लोगों को इतना नीचा दिखा करके रुक्मिणी को लेगा, इस बात का सबसे ज्यादा दुख। तो कहा यह भी तो कर्म की रेखा है ना, कब कौन व्यक्ति जीतेगा कब हारेगा सब लिखा हुआ है। आज जादुओं की छोटी सी सेना से हम लोग हार गए, ये लिखा हुआ था, उन लोगों के भाग में लिखा था कि जीतेंगे, और हम लोगों के ललाट में लिखा था कि हारेंगे। तो ब्रह्मा जी के लेख से तो हम लड़ नहीं पाएंगे, तो लिख दिया था ब्रह्मा जी ने, इसलिए वो लोग जीते हैं। ऐसा नहीं कि उनमें बहुत बड़ा बल है, ये तो यही कृष्ण है, 17 बार हमको हराया था, 17 बार हारने के बाद भी मैं हिम्मत नहीं हारा, और 18वीं बार उसको मथुरा से दूर कर दिया, खदेड़ दिया। तो एक बार हार गए तो आप इतना रो रहे हैं, 17 बार का हारा हुआ है, हमको कोई चिंता नहीं, 17 बार हारा और मेरा इतना अपमान किया था बलराम, बलराम मुझे पकड़ पकड़ करके और दया करके छोड़ रहा था। कृष्ण कहता था छोड़ दीजिए हमारे मामा के ससुर हैं, छोड़ दीजिए, और तिरस्कार करते थे कृष्ण। बलराम जी कहते थे नहीं, इसको हम जान से मार देंगे, जान से। वो हल से पकड़ लेते थे, हल से पकड़ कर और मुसल मारना चाहते थे, लेकिन भगवान कहते थे नहीं, हमारे मामा के ससुर हैं, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। चला जाता था रास्ते, और वो पहले ही हार में उसने निश्चय किया गया, अब मैं तपस्या करूंगा, अब राज नहीं करूंगा। तो दूसरे राजा लोग जूटे जो उसके अधीन रहते थे, कहते थे अरे आप ये क्या निर्णय कर रहे हैं, तपस्या करना भजन करना ये ब्राह्मणों का काम है, आपको ये काम नहीं करना चाहिए। छी आपको तो धनुष बाण उठा करके राज्य करना चाहिए, युद्ध करना चाहिए, ब्राह्मणों में तप करना, माला लेकर के सब ब्राह्मण का काम है, क्षत्रिय करना। तो क्षत्रियों के दृष्टि में ब्राह्मणों का काम एकदम कमजोर व्यक्ति का है। वो कहते नहीं तपस्या तो ठीक नहीं, आपकी बहुत बड़ी बेइज्जती हो। कोई कहेगा कि शिशुपाल ये जरासंध जी माला उठा लिए और इधर जंगल में जाकर दाढ़ी बढ़ा करके तप कर रहे हैं, ये अच्छा नहीं लगेगा। तब लौट गया, ठीक है, तो फिर दूसरी बार चढ़ाई किया, हार गया, फिर तपस्या करने जाने लगा। लेकिन 17 बार लोग समझा करके इसको लाए और अफसाही बात जीत गए, भगवान रणछोड़ बन गए। युद्ध छोड़ने का उन्होंने नाटक किया, आवश्यक था युद्ध छोड़कर भाग में। उसी को दृष्टांत के रूप में जरासंध कह रहा है शिशुपाल से कि 17 बार मेरी पराजय हुई थी, सारी सेना मार दी जाती थी, लेकिन फिर भी मैं हिम्मत नहीं हारा, मैंने भाग्य काम किया। शाहनी बार लिखा था ललाट में, ऐसे ही जादों के ललाट में लिखा है, जीत रहे जीत रहे ना, जब हमारा समय आएगा तब देखिएगा किस तरह से जीतते। और व्यक्ति को सम रहना चाहिए शिशुपाल जी, संसार में कुछ मिले ठीक है, ना मिले तब भी जो लिखा है होगा, इस तरह चिंता नहीं करनी चाहिए। हम तो बिल्कुल चिंता नहीं करते, तुम चिंता नहीं करते हो, लेकिन बेचारा कितना महीने से मनोरथ रखा था उसको कितनी चिंता होती है। इस तरह से जरासंध समझाया करता था, लेकिन हमेशा भगवान के विरुद्ध बोलता था, अनुकूल नहीं बोला। इसलिए भगवान ने जरासंध को फड़वा दिया भीमसेन से, जिस लकड़ी फाड़ते हो ऐसे तो बहुत बलवान व्यक्ति। जितने कृष्ण के विरोधी राजा थे वे सब इसको बहुत आदर करते थे, मानते। तो मैं ये कह रहा था कृष्ण के विरुद्ध मीटिंग चलती रहती थी चारों तरफ, इधर उधर ऐसा है वैसा है ये है। लेकिन भगवान तो सर्वत्र विजयी होते थे, उनकी तो बात छोड़ दीजिए, जो व्यक्ति कृष्ण का नाम जपता है वो सर्वत्र विजयी होगा। जत्र जोगेश्वर कृष्ण जत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजय भूति ध्रुवा नित्य मतिर मम। संजय जी कह रहे हैं कि मेरी मति है, मैं भी कोई कम पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं हूँ। हे महाराज धृतराष्ट्र, आप जो सोच रहे हैं कि आपके बेटा जीतेंगे, ये सब मरेंगे। जिस पक्ष में अर्जुन है और कृष्ण है वही पक्ष जीतेगा, इसलिए अभी भी आज ही फोन करके युद्ध रोकिए। इनके संजय के कहने का आशय यह था, धृतराष्ट्र से बात कर रहे हैं कि जिस पक्ष में जोगेश्वर अर्जुन है, कृष्ण है और गांडीव धनुषधारी अर्जुन है, वहीं पर विजय है, आपके पुत्रों के पक्ष में विजय नहीं, मरेंगे निश्चित। तो जिसको विजय चाहिए, श्री चाहिए, उस व्यक्ति को का कर्तव्य है कि वह भगवान कृष्ण का चरण ग्रहण करे, भगवान की शरण में हो, जैसे देवता लोग भगवान की शरण ले रहे हैं। तो जब भगवान इस जगत में अवतार लेते हैं तो उस समय भगवान के रूप का लाखों कोटि कोटि लोग दर्शन करते हैं, और इतना दर्शन करते हैं अथवा सुनते हैं भगवान के सुंदर रूप लीला चरित्र, उनकी समाधि लग जाती है, इतना गाढ़ विनिवेश होता है भगवान में कि वे कब संसार से काम क्रोध लोभ आदि को जीत गए उनको पता भी नहीं चलता है। समाधिना चेतचित वेशित चेत सही के इस भवसागर को जो एक समुद्र की तरह है उसको एक गोवत्स पदम कुर्वन्ति, गाय के बछड़े के खून में भरा हुआ जल बना देते। जो व्यक्ति भगवान का भक्त बन जाता है उसके लिए काम क्रोध लोभ का एक दुस्तर संसार सागर है, सागर जैसा, वह बछड़े के खुर में इकट्ठा हुए जल के बराबर है। कुर्वन्ति गोवत्स पदम कुर्वन्ति, अन्य साधनों से योग ज्ञान या तपस्या आदि से संसार सागर को पार करना कठिन है, अज्ञान को पार करना कठिन है, लेकिन उसी अज्ञान समुद्र को भगवान का भक्त वैसे पार कर जाता है जैसे कोई व्यक्ति रास्ता चलते हुए बछड़ों के खुर से बने गड्ढों को पार करता है। बरसात के दिन में जब माटी गीला हो जाता है और गौएं चलती हैं तो उनके खुर धंसते हैं जमीन में,
भस भस करके छोटे छोटे गड्ढा बन गया और गड्ढों में वर्षा का पानी भर जाता है। तो गौओं के साथ साथ कभी कभी गौओं के छोटे छोटे बच्चे भी चलते हैं, तो उनके खुर तो और छोटे छोटे रहते हैं। प्रारंभ में तो बकरी के बच्चे बकरी जैसे खुर रहेंगे, छोटे छोटे खुर। गोपद भी कहीं कहीं कहा गया है, लेकिन यहाँ पर तो गोवत्स कुर्वन्ति गोवत्स पद, गाय के बछड़े का खुर बना देते हैं। तो आप जरा कल्पना कीजिए, ऐसा विशाल समुद्र है जिसमें बहुत से नाक्र घड़ियाल आदि भरे पड़े हैं, भया भजी और पार करना है, और कोई व्यक्ति एक ऐसी नौका का आश्रय ले जिस पर चढ़ते ही समुद्र बछड़े का खुर बन जाए, उसे पार क्या करना पड़ेगा। तो ऐसे कहने पर आदमी कहेगा कि इसमें तो नौका ही नहीं चलेगी, नौका चलाने की जरूरत क्या है वहां। तो रास्ता चलने वाला व्यक्ति तो एक बार में 10-20 खुर पार कर सकता है। कौन देखता है कि हम कितना खुर पार किए, इसको कोई गिनता नहीं। भक्त को ये फुर्सत नहीं रहती है देखने की हमारे जीवन में कितने दोष बीत गए, क्या हुए, कितना काम बीता, क्रोध बीता, अपने आप लांघता जाता है जो दूसरों के लिए दुष्टर है। कि कैसे कोई व्यक्ति संसार सागर को जो वत्स पद बना सकता है, भगवान के श्याम सुंदर रूप में मन को आसक्त करने पर। जब भगवान के रूप में मन आसक्त हो जाता है अथवा भगवान की लीला के रस में विभोर हो जाता है, तब संसार की कोई भी वस्तु उसके लिए आकर्षण का विषय नहीं रहती, कोई किसी वस्तु की तरफ उसका मन जा ही नहीं सकता। भगवान के रूप में मन विभोर हो जाए तो किसी के रूप में मन नहीं जा सकता। भगवान के लीला कथा में नाम में यदि रस की अनुभूति होने लगे तो और कोई बात सुनने की इच्छा नहीं करेगी, न बोलने की इच्छा करेगी। गोस्वामी तुलसीदास जी विनय पत्रिका में पद में कहते हैं, जो महिराम लागते नीचे तो नव रस खटरस अनरस भय जाते सब सीठ। यदि वास्तव में राम मुझे मीठे लगने लगते मधुर लगते तो साहित्य के नव रस और भोजन के छव रस ये सब मेरे लिए सीखे हो जाते, कोई रस नहीं दे सकते। तभी तक इन बातों में रस की अनुभूति हो रही जब तक भगवान के नाम में रस नहीं मिल रहा, ने भगवान के रूप में माना शक्ति नहीं। इसी बात को अरविंदाक्ष शब्द से कह रहे हैं, जो हे अरविंदाक्ष हे कमल नायन आप परम सुंदर हैं, आपका रूप त्रिभुवन में परम मनोहर है, तो आप इसीलिए अवतार लेते हैं कि संसार में लोग आपको देखें, आपके विषय में सुने, आपके विषय में बोले, जिससे उनका मन अपने अविष्ट हो जाए और संसार के दुख को पार कर जाए। यदि भगवान इस संसार में नहीं आएंगे, नहीं अवतार लेंगे, तो जीवों का दुख मिटेगा नहीं, तो किसमें मन लगाएंगे। भगवान नहीं आएंगे तो बस लोग निराकार निराकार रट करके जीवन बिता। जब भगवान नहीं दिखाई देते तब कुछ लोग हल्ला करते हैं कि भगवान मेरा कहाँ है, नहीं आने के कारण। इसीलिए भगवान कभी कभी आते हैं कि देखो देखो मैं कैसा, मैं निराकार नहीं हूँ निराकार हूँ, भगवान दिखाते हैं मेरा ये स्वरूप, मेरा कृति पर ब्रह्म नर बपुतार स्वरूप, ये भगवान का रूप है। कभी कभी वे जगत में आते हैं, तो स्वयं तो संसार सागर को पार कर ही जाते हैं भक्त। स्वयं समुद्र के सुदुष्टरम धीमन भवानवम भीम मतभ्र सौहृदा भवत पदाम भोधना व मत्र ते निधाय जाता सुगनु ग्रहो भवान। आपके भक्त जन वरिष्ठ भक्त जन स्वयं तो संसार सागर को पार करते ही हैं, लेकिन इस संसार में वे वैष्णव परंपरा को स्थापित करते हैं, जिस उस परंपरा में आकर के बाद में भी लोग पार होते रहेंगे। एक बात कही जा रही है कि आपके चरण पंकज नौका पर वे सवार होते हैं, आपके चरणों का आश्रय लेते हैं, तो स्वयं समुद्रीय स्वयं तो पार हो ही जाते हैं, लेकिन आपके चरण कमलों की नौका को इसी पार रह करके पार हो जाते हैं। यह कह रहे हैं क्योंकि यह सब प्रश्न उठ सकता है कि भगवान के भक्त पहले आचार्य लोग पार हो गए भगवान के चरण कमलों की नौका से, तो नौका का यह स्वभाव है कि इस तट से लेकर के चलेंगे तो उस तट पर लग जाएंगे, तो फिर पार होने वाले कैसे पार होंगे। लेकिन इसका उत्तर पहले ही आ गया है कि भगवान का चरण कमल एक ऐसी नौका है उस पर चढ़ते ही भव सागर बछड़े का खुर बन जाएगा, तो उस पर कहां गया? वैसी नौका है कि उस पर चढ़िए बस भव सागर खत्म हुआ, खेना नहीं पड़ेगा, इसको मेहनत नहीं करनी। जैसे मान लीजिए कोई बहुत तो चला जाए, ऐसा नहीं है कि अब जोर लगावे दौड़े कब पहुंचे कब पहुंचे, उसमें चलने की जरूरत नहीं, बस बैठिए, भगवान की शरण में हो जाने की जरूरत है। श्री कृष्ण शरण,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम।
बहुत तेज गति से गाड़ी जाती है, तो भगवान को चरण कमलों का आश्रय लेते ही भाव सागर सूख जाता है, तो नौका तो इसी तट पर रह गई, और जो आश्रय लेगा उसके लिए सूख जाएगा। तो आश्रय लेते रहे इसके लिए आचार्यगण वैष्णव परंपरा स्थापित करते हैं, शिष्य परंपरा, और फिर बाद में पार होते रहेंगे और होते रहेंगे। मतलब तो भगवान के रूप गुण लीला आदि को भागवत में लिखते हैं, शास्त्रों में लिखते हैं, जिसको पढ़ करके सुन करके लोग भगवान में मन लगाएंगे, भक्त बनेंगे, कीर्तन करेंगे, और इस तरह संसार के दुख समुद्र को पार कर जाएंगे। तो भगवान के अवतार के पीछे बहुत बड़ी योजना है जीवों को सुखी करने की, इसके लिए आते हैं। तो इस पर मान लीजिए भगवान कहेंगे, लेकिन कुछ लोग तो हैं जो मेरा आश्रय तो नहीं लेते हैं, और वे लोग अपने को मुक्त मानते हैं, कुछ मायावादी जो भगवान के अंगों को चिन्मय नहीं समझते हैं, माया का विकार मानते हैं, उनके प्रति भगवान का संकेत है कि वे लोग तो मेरी शरण लेते नहीं है। तब देवता लोग कहते हैं, ये मुनि रविन्द्रस विमुक्त मानस तो यस्त भावाद विशुद्ध बुद्ध है आरुह कृष्ण परम पदम तथा पतन तोनागत विष्णु। वो अन्य देवता लोग, अन्य का अर्थ है भक्ते तरह, जो भक्त नहीं है भगवान के, अन्य जिनको भगवान के श्री विग्रह से, रूप से, नाम से, गुण से, लीला से प्रेम नहीं है, वे अन्य में। यन्ने रविन्द्रस है कमल नयन, आप इतना सुंदर हैं, लेकिन कुछ ऐसे मूर्ख जड़ व्यक्ति हैं जो आपसे प्रेम नहीं करते हैं, वे हैं अन्य। अन्य यन्ने रविन्द्रस विमुक्त मानिन, वे लोग अपने को विमुक्त मानते हैं, विमुक्त होते नहीं है, रहते नहीं है, वास्तव झूठ मूठ के मान लेते हैं कि हम मुक्त हैं। क्यों नहीं मुक्त होते हैं? क्योंकि तो यस्त भाव, आप में उनका भाव अस्त रहता है, उदित नहीं रहता, अर्थात आपसे जो प्रेम नहीं करते हैं, आपके प्रति स्नेह नहीं होता है, और इसलिए उनकी बुद्धि अशुद्ध रहती है, गंदी रहती है। आरुह कृष्ण परम पदम तथा पतन त्यधो अना धृत चुष्म गंधया, जो आपके चरण कमलों का आदर नहीं करते हैं, जो आपके सुंदर रूप का आदर नहीं करते हैं, ये ऊंचा परम पद पर चढ़ करके भी गिर जाते हैं। जो आपके चरण कमलों का आदर नहीं करते हैं, जो आपके सुंदर रूप का आदर नहीं करते हैं, ये ऊंचा परम पद पर चढ़ करके भी गिर जाते हैं। परम पदम का अर्थ है मोक्ष संहितम तपह सत्कुला। मुक्त होने के लिए ये सब साधन हैं कुछ, जैसे तपस्या करना, उच्च कुल में जन्म लेना, वेद अध्ययन करना, वहां से व्यक्ति परम पद को प्राप्त कर सकता है, मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन उच्च कुल में जन्म लेकर और तपस्या करके, वेद अध्ययन करके, जो व्यक्ति आपके सुंदर रूप से प्रेम नहीं करता, आपकी लीलाओं में अनुरक्त नहीं होता, आपके नाम से प्रेम नहीं करता, तो वह गिर जाता है, अभव नीचे गिरता है, नरक में जाता है, फिर दूसरी जगह जन्म। एक समय उसे कुल में जन्म लिया, विद्या पढ़ा, तप किया, लेकिन भगवान के श्री विग्रह का आदर नहीं करने के कारण, चरण कमल का निरादर करने के कारण, उसको माया का विकार कहने के कारण गिर जाता। भगवान आते हैं जगत में जीवों का हित करने के लिए, तो उनको आदर देना चाहिए, उनका भक्त बनना चाहिए। नहीं, कुछ लोग ये कहना चलता रहे, ये तो मनुष्य है, थोड़ा तेजस्वी है, ये है, ऐसे बोलते हैं, आज तक बोलते हैं। गीता इसी जगत में है, लेकिन कृष्ण क्या गारंटी है कि भगवान, कुछ लोगों ने भगवान कहना चालू कर दिया, कुछ ऐसे कहते हैं भगवान कहना चालू कर दिया, वो भगवान कैसे है। अगर उसका एक व्यक्ति कह रहा था कृष्ण के बारे में अगर विचार करो तो ऐसा भगवान क्या हो, क्यों दूसरे के घर में माखन चुराएगा? ऐसा तो साधारण बच्चा भी नहीं करता है, अपने घर में जो बना है पका है खा लेता है। तो दूसरे के घर में तो चुरा चुरा कर खाएगा नहीं, तो दूसरे के घर में ये सब चुराने वाला व्यक्ति भगवान कैसे हो सकता है? ऐसे बोलते हैं, गोपियों का वस्त्र क्यों चुराया, तो ये क्यों किया, ये क्यों किया। तो पहले तो इन लीलाओं का रहस्य सुनने का प्रयास करना चाहिए। तो कुछ लोग खुलम खुला कहते हैं और कृष्ण एक समाज सुधारक थे, एक मनुष्य थे। हाँ, वो थोड़ा बहुत अग्रसर मनुष्य थे, ऐसा कहा। नहीं, भगवान मनुष्य नहीं थे, मनुष्य नहीं है भगवान, भगवान है। एक बार एक व्यक्ति हमसे इतना बहस करने लगा, तुम कृष्ण को भगवान कहते हो जिसको बहेलिया मार दिया था? ट्रेन में आ रहा था मैं, और इस समय वो बोल रहा था। मैं पूछा कि कहां से जान गए कि उनको बहेलिया मार दिया? पढ़े हैं तो नहीं, हम सुने इतना ही सुने हो। जब व्याध भगवान के चरण में बाण मारा तो क्या हुआ? वो बाण लगा चरण में, मैं उसको बताया, भागवत हाथ में लिया था, मैं बताया कि वह बाण भगवान के चरण में के स्पर्श नाम मात्र का किया। नैनम छिंदम विशस्त्राणि नैनम दहति पावक। आत्मा को तो बाण नहीं काट सकता, जल गीला नहीं कर सकता, अग्नि जला नहीं सकता है, हवा सुखा नहीं सकता, तो परमात्मा को कैसे अस्त्र काट देगा? जरा विचार करो। और उसके बाद स्पष्ट लिखा गया है कि व्याध आया और डर गया भगवान के रूप को देख करके, लगा प्रार्थना करने। तो भगवान ने कहा कि तुम डरो मत। और उसी समय विमान आया और वह गया स्वर्ग, भगवान ने उसको ये व्यवस्था दिया। इसके बाद भगवान वहीं पर रुके और उद्धव जी को उन्होंने उपदेश दिया। उद्धव जी को जब उपदेश देकर के पूरा कर लिया तो फिर ब्रह्मा जी आए, भगवान शिव आए, नारद जी आए, इंद्र आए, सब आए और कहने लगे कि अब देवताओं का कार्य हो चुका, पृथ्वी का भार दूर हो चुका, यदि आपकी इच्छा है तो आप अपने धाम लौट सकते हैं, लेकिन आपके चरणों में यही निवेदन है कि जब आप अपने धाम जाइए तो हमारे घरों से होकर होते हुए हमारे घर पर भी पधारिए। मतलब अमरावती में, कैलाश में, अलकापुरी में, इधर होते हुए जाइए। सभी देवता लोग भगवान से कहे कि सरकार तो हमारे घर में भी आए, हमारे घर। तो भगवान जब जा रहे थे तो एक ही समय इतना विग्रह प्रकाशित किए कि प्रत्येक देवता के घर में उपस्थित, और इसके बाद चले गए। तो भगवान तो ऐसे हैं, व्याध ने बाण मारा जरूर, लेकिन हुआ क्या? भगवान तो इसी श्रीविग्रह से अपने धाम में गए, स्पष्ट लिखा गया है श्रीमद् भागवत में, इसी श्रीविग्रह से गए। भगवान शरीर छोड़ ही नहीं सकते, जब शरीर और शरीरी में भेद हो तब न भगवान छोड़ेंगे, शरीर छोड़ ही नहीं सकते, ये तो पूर्ण आत्मा। लेकिन फिर भी लोग संशय करते हैं, ऐसा हुआ, ये हुआ, वो हुआ, कहते हैं कृष्ण बहुत फ्रस्ट्रेटेड हुए लास्ट में, इनकी 16 स्त्रियां छूट गई, ये हुआ। लेकिन भगवान स्वयं ही इस तरह से लीला की, वह एक जादू था, जादुओं का युद्ध परस्पर, महाजादूगर भगवान का जादू था, कोई कहीं नहीं गया वास्तव में, सभी नित्य द्वारका में, अप्रकट द्वारका में उस समय रहे और आज भी है। भगवान के प्रिय जन कैसे उनका वध हो सकता था, जरा विचार कीजिए। अपने भक्त परीक्षित महाराज को भगवान गर्भ में नहीं मरने दिए, ब्रह्मास्त्र से नहीं मरने दिए, तो क्या वे प्रभु अपने परिकरों की रक्षा ब्राह्मणों के हिसाब से नहीं कर सकते? लेकिन वे तो किए, ऊपर से केवल जादू दिखाया गया। इसमें से बहुत लोग जादू देखे होंगे, जो चीज नहीं है वो दिखाई देता है, इसको जादू कहते हैं, नहीं है वो दिखाई। मैंने एक बार जादू देखा था, एक जादूगर अपने बच्चे से कहा कि शौच करो, तो शौच करने लगा तो इतना चांदी का सिक्का शौच कर दिया, ये बिल्कुल आंख से देखे हुए बात कर रहा। उस समय उम्र कम थी, हम सोचे कि अब तो ये धनी हो जाएगा, ये रखेगा। तो बाद में उसके साथ आए हुए एक व्यक्ति से जिज्ञासा कर रहे थे हम लोग, ये पैसा कहाँ ले जाएंगे, क्या करेंगे। उसके बाद वो बताया कि ये सब कुछ नहीं है, पैसा वैसा नहीं है, जादू का ही मतलब होता है। वास्तव में एक पैसा नहीं था उसके पास उस चांदी का। स्पष्ट हमारे गांव में ही ये घटना हुई, देखो बिल्कुल पैसा नहीं है और लगभग 6-7 किलो तक का वजन होगा, इतना पैसा सर्च कर दी। वास्तव में सोच नहीं हो रहा था लेकिन ऐसा लग रहा था कि पैसा निकाल रहा है। कभी कभी बच्चे पैसे निकल जाते हैं तो वो पैसे को निकालते हैं, लेकिन जादू में तो ये दिखाया गया। जादू में जो परस्पर युद्ध हुआ प्रभास में, वह युद्ध नहीं हुआ, जादू था। ऐसा देखने में लगा कि कृतवर्मा और प्रद्युम्न में झगड़ा चालू हो गया और कृष्ण बलराम समझा रहे हैं, नहीं समझे बल्कि इनको ही गाली देने लगे। तो बलराम जी रोके प्रद्युम्न को, रुको रुको रुको, चलो गाली देते हैं, तुम उसका पक्ष कर रहे हो। दोनों भाई को इस तरह से बोले तो ये लोग इनका घास उखाड़ उखाड़ कर सबको अपने हाथ से मारकर खत्म कर। क्या भगवान कभी भी अपने परिकरों को, अपने भक्तों को इस तरह निर्ममता से मार सकते हैं? कभी संभव है? कोई कल्पना भी कर सकता है? जिनको पोसे थे पाले थे और उन्हीं को ऐसा वो मारे, लेकिन ये तो भगवान का जादू है। श्री चैतन्य महाप्रभु जब सनातन गोस्वामी को भागवत सुना रहे थे तो ये सब पॉइंट पर बहुत ज्यादा बताए हैं कि सब सिखाई लो प्रभु भागवत सिद्धांत। चैतन्य महाप्रभु भागवत सिद्धांत समझाए, कृष्ण की मौसल लीला और जो कुछ है इसका क्या रहस्य है, भगवान चैतन्य महाप्रभु ने कृपा करके समझाया। तो भगवान इस जगत में आते हैं तो लोग प्रेम करते हैं, भवसागर पार होते हैं, लेकिन जो अन्य लोग होते हैं पार नहीं होते, गिर जाते हैं, लेकिन भगवान के भक्त नहीं गिरते हैं। और सबसे बड़ा लाभ होता है भगवान के अवतार के बाद कि श्रवण गणन संस्मरण सचिंतन नामा निरूपान सुमंगलान, भगवान के नाम रूप जो परम मंगलमय है इसको जीव सब गाते हैं। देवता तो गाते ही रहते हैं, मनुष्य गाते हैं, सुनते हैं, उनका मंगल होता है। देवता लोग बाद में कहते हैं कि आप हम लोगों के लिए बारम्बार अवतार लिए हैं, जैसे ब्राह्मण में अवतार लिए परशुराम जी के रूप में या वामन देव के रूप में, राजाओं में अवतार लिए पृथ्वी महाराज के रूप में, भगवान श्री राम के रूप में, नरसिंह के रूप में अवतार लिए, बाराह के रूप में अवतार लिए, हंस के रूप में अवतार लिए, तो यह आपका स्वभाव है प्रभु, हम लोगों से आप बहुत प्रेम करते हैं, सदा आते रहते हैं, उसी तरह से इस बार आप स्वयं आए हुए हैं। तो हे जादवों में सर्वश्रेष्ठ, हम लोग आपका नाम रखेंगे जदुत्तम, हम आपके चरण कमलों की वंदना करते हैं। भगवान अभी गर्भ में है और जदुत्तम जादव शिरोमणि नाम देवता लोग देने लगे, हम आपकी वंदना करते हैं। फिर माता देवकी से देवता लोग कह रहे, देखिए कि बेचारे खिन्न है कि जन्म लेने पर कंस मारेगा। तब ये लोग कहते हैं, माँ तुम भयभीत मत हो, तुम्हारे गर्भ में साक्षात भगवान आए हैं, अन्य वो साधारण बच्चा नहीं आया है कि कंस मार देगा, कंस इसका गर्भ नहीं करेगा, कंस को ये समझो कि अब मर ही चुका है। अरे 11 वर्ष में क्या है, 10-11 वर्ष के बाद मर जाएगा, तो कंस मर ही गया ऐसा समझो। अब कंस से भय मत करो, तुम्हारा पुत्र तुम्हारी क्या हम लोगों की रक्षा करेगा, सबकी रक्षा करेगा, पूरे विश्व की रक्षा करेगा। और माता देवकी की वंदना सभी कर रहे हैं। अब जो भगवान की माँ है तो उसकी वंदना क्यों नहीं करें? सब लोग वंदना कर रहे थे, ब्रह्मा जी शिव जी देवकी जी की वंदना कर रहे हैं। भगवान गर्भ में है, भगवान की माँ है तो उसकी वंदना कर रहे थे, भगवान की वंदना कर रहे थे और देवकी जी की परिक्रमा किए सारे देवता, चूंकि उनके भीतर भगवान थे। और इसके बाद जय जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण इत्यादि कह रहे थे, आवाज बाहर नहीं जा रही थी, आवाज बाहर नहीं जा रही थी, कोई दूसरा न सुन। इसके बाद ब्रह्मा जी ने संकेत किया कि तब चला जाए, भगवान के जन्म लेने का प्रकट होने का समय आ रहा, तो देवता लोग निकल नहीं रहे थे। ब्रह्मा जी ने कहा भाई चले चले सब लोग निकल गए अब चला जाए, तो देवताओं ने कहा, देवता लोग सोचने लगे कि हम लोगों को भेज करके लोग फिर कोई स्पेशल मिलन देखेंगे। तो देवताओं ने कहा ठीक है चला जाए, आगे तो आप चलते हैं। तो इसीलिए ब्रह्मेशानो पूर्व भारत, ब्रह्मा और ईशान को आगे करके देवता लोग गए। तो लोग सोचे कि हम लोगों को भेज करके लोग फिर कोई नया आनंद लूटेंगे, तो हम लोग रहे। इसलिए ब्रह्मेशानो पूर्व धारा, पूरा धारा मतलब आगे करके तब देवता लोग निकल गए। अब अजन्मा भगवान के जन्म का समय आ गया। सुखदेव गोस्वामी तृतीय अध्याय चालू करेंगे, प्रकृति का वर्णन करेंगे, भगवान के प्राकट्य के समय हवा कैसे चल रही थी, सूर्य चंद्रमा का प्रकाश, चंद्रमा का प्रकाश कैसा था, जल कैसा था, कमल कैसे खिले थे, देवताओं की क्या स्थिति थी, साधुओं की स्थिति क्या थी, दैत्यों की स्थिति, सब कुछ बहुत सुंदर हो गया था। केवल असुरों को छोड़ करके बाकी सबकी शोभा बढ़ गई थी, ऐसा उन्होंने वर्णन किया। हरे कृष्ण।